नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान खान को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पीठ ने 453 पृष्ठ के फैसले में शेख हसीना को 2024 के जुलाई अगस्त विद्रोह में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें उकसाने, आपराधिक साजिश रचने और विद्रोह को रोकने में असफल रहने सहित कई मामलों में दोषी करार दिया। फिलहाल निर्वासन में रह रही 78 साल की श्रीमती शेख हसीना ने फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े आरोप उन्हें राजनीति से हटाने के लिए गढ़े गए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने करीबी पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया। भारत बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करता रहेगा। सऊदी अरब के मदीना में हैदराबाद के उमराह जायरीन को ले जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। बस में 45 यात्री सवार थे।
ये दुर्घटना भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम के स्थान पर हुई। डीजल टैंकर से टकराते ही बस में तुरंत आग लग गई। जानकारी के अनुसार मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतक हैदराबाद के थे। हादसे में जीवित बचे एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सऊदी अधिकारियों और तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय कर रहे हैं। भारतीय दूतावास भी सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के साथ संपर्क में है। पीड़ित मदीना के 4 अस्पतालों में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जिद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी प्रकार की युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। उमर मोहम्मद नबी के साथ षड्यंत्र रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई। वर्तमान सरकार की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल भंग करने संबंधी एक पत्र सौंपा। सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों की दरों में 26% की बढ़ोतरी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों की 1,00,000 प्रतियों के लिए प्रति वर्ग सेंटीमीटर ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन की दरें 47.40 रूपए से बढ़ाकर 59.68 रूपए कर दी गई हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ईपीएफओ के मंडप का उद्घाटन किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लंबे समय से देशभर के करोड़ों श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा के एक स्तंभ के रूप में कार्य करता रहा है। जापान के टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।